पांचवी कक्षा के दो शरारती बच्चे थे और एक दिन उनको एक शरारत सूझी। जब वो क्लास में बैठे थे तो सोच रहे थे कब तक पढ़ना है, रोज रोज वही वही पढ़ाई, कब तो अचानक छुट्टी मिल जाए स्कूल को। और तभी उनमें से एक ने देखा स्कूल के बाहर तीन बकरियां हैं। तो एक ने सोचा और कहा कि मेरे पास एक बहुत अच्छी योजना है, आइडिया, जिस वजह से हमको कल छुट्टी मिल जाएगी। दूसरे ने पूछा वो कैसे। तो पहले ने कहा हम उन तीनों बकरियों को स्कूल के परिसर में, कैंपस में छोड़ देंगे और सारा दिन सब लोग उन्हें ढूंढने में लग जाएंगे। तो दूसरे मित्र ने कहा वो कैसे हो सकता है। पहले ने कहा तुम देखो तो सही, स्कूल पूरी होती है फिर भी वो दोनों वहीं रुकते हैं, सब लोग चले जाते हैं और उन तीन बकरियों को लेकर वो दो बच्चे स्कूल की कक्षा में आते हैं। तीनों ही बकरियों पर एक बहुत बड़ा काला सा दाग करते हैं और पहली बकरी पर लिखते हैं नंबर वन, दूसरी बकरी पर लिखते हैं नंबर टू और तीसरी बकरी पर लिखते हैं नंबर फोर। और वो चले जाते हैं। और दूसरे दिन सुबह सुबह जब स्कूल खुलता है तो शोरगुल मच जाता है। स्कूल के अध्यापक, शिक्षक, शिक्षिका सभी देखते हैं कि ये क्या, ये बकरियां कहां से आ गई। और फिर ध्यान से देखते हैं तो देखते हैं एक बकरी पर लिखा है वन, दूसरी पर लिखा है टू, तीसरी पर लिखा है फोर, तीसरी कहां है, थर्ड नंबर की कहां है। तो खोजबीन चालू होती है। सारे टीचर्स एक एक कक्षा में जा जाकर ढूंढते हैं कि वो तीसरे नंबर की बकरी कहां है। इस खोज में स्कूल के प्रमुख अध्यापक भी लग जाते हैं क्योंकि पहली तो है, दूसरी भी है और चौथी भी है, तो तीसरी तो होनी ही चाहिए, और वो मिल क्यों नहीं रही है। स्कूल के जो सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें भी ये कार्य सौंपा जाता है कि कैसे भी करके उस बकरी को ढूंढो। तो सारा दिन सभी विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षिका उसी बकरी को ढूंढने में लग जाते हैं और कि जो बकरी है ही नहीं, वो तो दो विद्यार्थियों ने अपनी चालाकी से अदृश्य कर रखी है। और उनको छुट्टी मिल जाती है पढ़ाई से। कहानी सुनकर हंसी भी आएगी, पर क्या मनुष्य आत्माएं भी यह नहीं कर रही है? उसी की खोज में है जो है ही नहीं। ये आंखें उसे ही देखना चाहती है जो कि अज्ञात है, ये कान उसे ही सुनना चाहते हैं जो कि है ही नहीं, ये हाथ उसे ही स्पर्श करना चाहते हैं उसकी ही गंध और उसका ही रस लेना चाहते हैं, चाहे मर्यादाओं को दांव पर रखना पड़े, ताक पर रखना पड़े। ढूंढ रही है आंखें अपरिचित को, ढूंढ रही है आंखें और भटक रही है और खोजबीन कर रही है और बड़े बड़े जाल बुन रही है उसे देखने के लिए, जो केवल मृग तृष्णा समान है, सुनना चाहती है उस संगीत को जो कि मायावी है, स्पर्श करना चाहता है यह हाथ, रस लेना चाहता है उसका जो कि मर्यादा के विपरीत है, गंध लेना चाहता है उसका जो कि भ्रम का भ्रम में डालने वाला है। तो जैसे उस स्कूल के सभी लोग ढूंढने में लग गए, क्या हम आत्माएं भी या हमारी ये कर्मेंद्रिया भी कहीं उन रसों में तो नहीं जा रही है, उन्हें ढूंढने में, खोजबीन करने में, जो कि है ही नहीं वास्तव में, जो भ्रम है, और सच्चा सुख उनमें नहीं। तो एक एक कर्मेंद्री इतनी छोटी होते हुए भी कैसे बड़ा जाल बुनती है, उसकी चर्चा आज बाबा ने मुरली में की है। पिछले रविवार हमने देखा त्याग क्या है, त्याग की सीढ़ियां। पहली सीढ़ी कौन सी है? देहभान का त्याग। और दूसरी सीढ़ी कौन सी है? देह के संबंधों का त्याग। तो पिछली बार हमने देखा था देह के भान का त्याग, और देह के संबंधों का त्याग कब देखेंगे? वो अगले संडे है, 8 तारीख की मुरली। और आज क्या है फिर? बाप दादा किसको देख रहे हैं? इससे पहले कि आज की मुरली चालू करें, बाबा ने पिछले संडे देहभान से मुक्त होने के लिए कुछ युक्तियां बताई थी, मुख्य रूप से 5। पहली, इस देह को क्या समझो? अमानत समझो। इस देह को क्या समझना है? अमानत समझना है। दूसरा, इस देह में कैसे रहो? जैसे कि मेहमान। यह देह क्या है? घर है। घर और घर की सामग्री, दोनों का त्याग अर्थात संपूर्ण त्याग। यदि एक भी कर्मेंद्रिय, अगर एक भी सामग्री अपनी ओर आकर्षित करती है तो उसे संपूर्ण त्याग नहीं कहा जाएगा। त्याग अर्थात हर वस्तु हर चीज को छोड़ देना, अपनेपन से किनारा कर लेना, अधिकार समाप्त कर देना। जिसके प्रति त्याग किया है वो वस्तु अब उसकी हो गई। यह त्याग की परिभाषा बाबा ने दी थी। त्याग की परिभाषा बहुत कुछ है। तो सबसे पहले देह को अमानत समझना, दूसरा देह में स्वयं को मेहमान समझना, तीसरा फरिश्ता स्वरूप। यही सोचो कि यही देह में मैं फरिश्ता स्वरूप हूं। चौथा, जैसे जैसे ब्रह्मा बाबा ने इस तन को क्या समझा? रथ समझा। वैसे ही हमें क्या समझना है इस तन को? रथ। और पांचवा, जैसे शिव बाबा इस तन में फंसता नहीं है, वैसे तुम भी इस तन में नहीं फंसो। तो ये 5 बातें सुनाई थी। आज बाप दादा कौन सी सभा को देख रहे हैं? राज ऋषियों के दरबार को देख रहे हैं। दरबारे आम नहीं, दरबारे राज ऋषि। हम सब कौन हैं? ऋषि है। ऋषि शब्द बहुत कुछ है। वेदों के गीत जिन्होंने गाए उन्हें ऋषि कहा जाता है। ऋषि अर्थात ऋष अर्थात देखना, जिन्होंने देखा अनुभव किया और गाया, ऐसे वो मंत्र दृष्टा, उसके लिए ऋषि शब्द का प्रयोग हुआ है। राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि, देवर्षि, महर्षि, परमश्री, कंदरश्री, श्रुतर्षि, अलग अलग ऋषियों का गायन है। तो हम हैं ऋषि, राज ऋषि, और मुख्य रूप से ऋग्वेद के लिए कहा जाता है। वैदिक काल में 10,000 से अधिक जो श्लोक है उनको गाने वाले जो है वो ऋषि। पूरे मिलाकर चारों वेदों में 20,000 से अधिक मंत्र है, उन मंत्रों को गाने वाले जो है वह ऋषि, सीयर ऑफ द थॉट। तो ऋषि अर्थात जो देखता है, ऋषि अर्थात जो दृष्टा है, ऋषि अर्थात जो तीनों लोकों को देखता है और त्रिकालज्ञ है, चीजों को वैसे ही देखता है जैसे वो है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, सार क्या है और असार क्या है, सत्य क्या है और मिथ्या क्या है, वह जानने वाला, सार का अनुभव करने वाला जो है वह है ऋषि। और हम सब कौन है? राज ऋषि। राज अर्थात राजा, राजा अर्थात अधिकारी, मालिक, सेल्फ मास्टर, सेल्फ सोवरेन अधिकारी। और ऋषि अर्थात त्यागी, ऋषि अर्थात तपस्वी। जहां तप है, जहां त्याग है और जहां अधिकार भी है, ऐसा अद्भुत अपूर्व संतुलन जहां है, उस अवस्था का नाम है राज ऋषि। जहां पर एक और अधिकार है, संपूर्ण अधिकार, केवल जानते हो नहीं अनुभव भी करते हो। किस बात का अधिकार? राजा अर्थात अधिकारी, स्वयं की कर्मेंद्रियों पर अधिकार, स्वयं प्रशासन, सेल्फ मास्टरी अर्थात राज्य अधिकारी, स्वराज्य अधिकारी। त्याग है इसलिए भाग्य मिला, इसलिए अधिकारी बने। तो जहां दोनों ही चीजें हैं वो हम हैं, राज ऋषि। इस मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर एक तुलनात्मक दृष्टिकोण दिया है। एक तरफ तो अधिकारी आत्माएं हैं और दूसरी तरफ दास आत्माएं हैं। दास दुख का अनुभव होता है सुनते ही, दासतापूर्ण जीवन, लाइफ ऑफ स्लेवरी, वह दासत्व का भाव भारत में और विश्व भर में लगभग सभी खंडों में, जो एक सबसे अमानवीय प्रथा रही है वह है दास प्रथा, जिसमें मानव तस्करी, मनुष्य को खरीदा जाता और बेचा जाता। व्यक्ति कभी जन्म से ही दास होता तो कभी खरीदने के बाद से और उनके साथ अत्याचार जो किया जाता। अफ्रीका से कहानियां बहुत सारी है, कैसे दासों को पकड़ के जहाजों में डालकर अमेरिका पहुंचाया जाता। हर देश में ये कहानी है और भारत में भी लगभग 84 साल 1206 से लेके तो 1290 तक दास वंश रहा, मामलुक वंश। उस दास प्रथा जो थी, गुलामी प्रथा जो थी, मामलुक डिनेस्टी जिसे कहते हैं, वहां पर दासों के साथ, गुलामों के साथ अति अमानवीय, जो कहा इस तरह का व्यवहार किया जाता। जो जिसका दास है वो मरने के बाद भी कभी कभी तो उसी मालिक के साथ दफनाए जाते, ताकि मरने के बाद भी उनकी सेवा कर सके, ऐसी भी प्रथाएं हैं। तो उसी दास की व्याख्या आज बाबा ने की है, किसे दास कहा जाएगा, वो दासत्व क्या है, वो दासता का जीवन क्या है, दास कैसे होता है, क्या उसकी परिभाषा है, क्या उसके चित्त में है, क्या उसके मन में है, क्या उसके तन में है, कैसा होता है वो। और दूसरी तरफ तुलना की है अधिकारी आत्मा की। अधिकारी आत्मा एक सिंहासन पर आरूढ़ है, अधिकारी आत्मा कंफर्ट में है, बाबा ने कहा, हर्षित है तन से और मन से, व्यक्ति परिस्थिति वैभव वायुमंडल देख रहा है और खुश हो रहा है, स्वयं मांझी है परीक्षा के बीच में और हंसते हंसते और परीक्षा को पास कर रहा है, परंतु दूसरी ओर वो दास है, अपसेट है, कंफ्यूज्ड है, परेशान है, परीक्षाओं के बीच मझधार में, सदा परीक्षाओं के मझधार में स्वयं को अनुभव करता है। यह दासत्व का जीवन है। उसमें मुख्य रूप से एक बात बाबा ने दास के लिए कही है, अधीनता। क्या कहा? अधीनता, डिपेंडेंसी। उसका जो जीवन होता है वो अधीनता का जीवन होता है। आज के युग में, समय में लगभग सभी देशों से दास प्रथा समाप्त हो चुकी है। कई सारे आंदोलन हुए हैं, विप्लव हुए हैं, विद्रोह हुए हैं, एंटी स्लेवरी कमिटीज बनी है, सोसाइटीज बनी, और उन्होंने उस दासता को उखाड़ फेंक दिया है। परंतु जिस दासता की बाबा बात कर रहे हैं वो अब भी है। और बाबा किससे बात कर रहे हैं? ब्राह्मण आत्माओं से। तो दासता का जीवन अर्थात अधीनता का जीवन। तो सबसे पहले हम इस अधीनता को समझेंगे क्या है। हम सोच रहे थे और ऐसी सात प्रकार की अधीनता है। स्वयं को चेक करो कि इनमें से कोई भी अधीनता तो हम में नहीं। अगर इनमें से कोई भी अधीनता है तो हम कौन हुए? दास। बाबा ने कहा, देह के दास से देह के मालिक बन गए हो। यदि ऐसा परम ज्ञान प्राप्त होने के बाद, ऐसा दिव्य प्रकाश प्राप्त होने के बाद भी चित्त के किसी कोने में उसी दास के संस्कार है, वही अपसेट और कंफ्यूज्ड होने के संस्कार है, वही परेशान होने के संस्कार है, एक मास से परेशान, तीन मास से परेशान, छह मास से परेशान, अब भी यदि कहते हैं और अब भी फाइल बढ़ रही है तो क्या करना पड़ेगा? फाइन भरना पड़ेगा। सबसे पहली दास्ता शारीरिक दास्ता, फिजिकल डिपेंडेंसी। यदि कोई बीमारी नहीं है उसके बाद भी कई ऐसे समझते हैं कि हम मन से बीमार है, शरीर से बीमार है, और हर चीज के लिए, उठने के लिए और बैठने के लिए किसी और का सहारा लेते हैं, जबकि शरीर में कोई बीमारी नहीं है। शरीर फिर भी स्वस्थ है, परंतु मन में ये सोच रखा है कि शरीर कमजोर है। वास्तव में कमजोरी शरीर में नहीं, मन में है। ये शायद कम देखने में आती है, परंतु है। कोई बीमारी नहीं है, फिर भी बार बार पहुंच जाते हैं कहां पर, हॉस्पिटल, और कहते हैं दवाई दो। दवाई के बिना चैन नहीं आता। ऐसी भी आत्माएं हैं, कोई बीमारी है नहीं, सारी बीमारी मन में है, परंतु दवाइयों की अधीनता, किसी व्यक्ति की अधीनता, किसी व्यक्ति पर निर्भर है उठने बैठने चलने फिरने घूमने के लिए, वो शारीरिक अधीनता है। दूसरी है इंटेलेक्चुअल डिपेंडेंसी, बौद्धिक। हर व्यक्ति चाहता है कि कोई भी बौद्धिक कार्य मैं ना करूं, किसी और से करा लिया जाए। यदि ऐसा कोई कार्य दिया जाए, ऐसी कोई सेवा दी जाए, तो क्या कहेंगे? किसी और को, किसी और पर निर्भर है। कई सारे निर्णय जीवन के बुद्धि से किए जाते हैं, जबकि भगवान ने सभी को दिव्य बुद्धि दी है, फिर भी यह अधीनता कि हमारी बुद्धि कैसी है, कमजोर है। हम ज्यादा सोच नहीं सकते, चिंतन नहीं कर सकते, निर्णय नहीं कर सकते, ये बौद्धिक अधीनता है। शायद विस्मृति हो चुकी है, क्या हमारे जीवन के निर्णय हमसे अधिक कोई दूसरा कर सकता है? क्या हमारी जीवन की समस्याओं का उत्तर किसी और के पास है? क्या जितना हम स्वयं को जानते हैं उतना दूसरा हमें जानता है? क्या जिन परिस्थितियों से हम गुजरे हैं, जिस बचपन से हम गुजरे हैं, और जिस तरह की बुद्धि को पाया है, क्या उससे अधिक अनुभव किसी और को है? क्यों अपनी बुद्धि को इतना कमजोर समझ रखा है? अगर ऐसा है तो उस वरदान को रोज रोज अमृत वेले फिर लेने की आवश्यकता है, दिव्य बुद्धि भव का। जिस बुद्धि ने भगवान को जान लिया, पहचान लिया, वो साधारण कैसे हो सकती है? क्या अपनी बुद्धि पर ही विश्वास नहीं? बौद्धिक अधीनता। तीसरी है भावनात्मक अधीनता, इमोशनल डिपेंडेंसी। भावना में इतने कमजोर हो चुके हैं कि किसी का सहारा चाहिए, कोई भाई चाहिए, कोई बहन चाहिए। इतने कमजोर है भावनाओं में कि थोड़ी परिस्थिति आ जाती है तो हिल जाते हैं, सिंहासन से नीचे आ जाते हैं। अधिकारी आत्मा अर्थात जो सेट है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं और मैं विघ्न विनाशक हूं कि सेट पर जो सेट है वो है अधिकारी आत्मा। याद का चुंबक, बाबा ने कहा है, शायद वो चुंबक से सेट नहीं है, इसलिए परिस्थितियां डुलाती है। अधिकारी अर्थात अडिक, अधिकारी अर्थात उस हिमाच्छादित हिमालय की तरह अडिक, वैसी हिमालयन स्थिति अर्थात अधिकारी आत्मा। तो भावनात्मक डिपेंडेंसी, इमोशनल डिपेंडेंसी, भावनात्मक अधीनता, अवलंबन किसी का आधार। हर चीज शेयर करनी है उसके लिए व्यक्ति चाहिए, अगर ना मिला तो दुख, अगर जिसके साथ शेयर किया और उसने कोई उत्तर ना दिया तो अधिक दुख। मदद मांगी फिर भी गुहार का कोई उत्तर ना आया, अत्यधिक दुख। अपेक्षाएं पूर्ण नहीं हो रही है और दुख। पर क्या मनुष्य हमारी इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है? फिर भी भावनात्मक दृष्टि इतने कमजोर हो गए कि कोई चाहिए, भावनाओं को शक्तिशाली नहीं बनाया है। उसके पीछे वही सेंसिटिव नेचर अब भी काम कर रहा है, अब भी वही आंखों से आंसू बार बार। चौथी, आर्थिक अधीनता, विशेष रूप से जो भी कुमार है, इस ब्रह्मा कुमार जीवन में जो बाहर रहते हैं उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो किसी के सामने हाथ ना पसारे, चाहे भोजन के लिए या किसी और बात के लिए। स्वयं स्वयं के पैरों पर जो खड़े हैं, वहां अध्यात्म का ये मार्ग सरल हो जाता है और साधना भी सरल हो जाती है। तो सभी के लिए भी आर्थिक रूप से अधीन ना हो, किसी और पर। जिसके हम अधीन होते हैं उसके दास बन जाते हैं। दास की अपनी कोई इच्छा नहीं होती। महाभारत में दिखाया है भीष्म पितामह ने अपने मृत्यु से पहले, उस निर्णायक युद्ध से पहले अपने सभी दासों को मुक्त कर दिया और कहा था कि दास का जीवन बहुत कठोर होता है, इसके लिए मैं आज से तुम्हें, तुम सबको मुक्त करता हूं। जिसके हम दास है, एक सूक्ष्म दासता का वो भाव रहता है, हम स्वतंत्र नहीं रहते, परतंत्रता की बेड़िया हमारे पैरों में जकड़ी होती है, कैसे उड़ सकेंगे। चौथी पांचवी, कर्म की डिपेंडेंसी, कर्म अधीनता, सेवा की अधीनता। छोटी छोटी सेवाओं के लिए भी दूसरे दूसरे चाहिए। बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा है, अपना काम स्वयं करो, किसी और से सेवा न लो, जितना हो सके उतना। स्वयं स्वयं के ऊपर निर्भर रहना है। वॉक अलोन एकांगी पगडंडी है, अकेले को चलना है सबको। द पाथ इज नैरो, बाइबल में लिखा है, ये जो मार्ग है अध्यात्म का बहुत छोटा है। इसलिए जितना हो सके सेल्फ रिलायंस, स्वयं के कार्य स्वयं करने, स्वयं की सेवा स्वयं करनी है, जितना हो सके, जितना हम कर सके, औरों पर निर्भर ना रहे सेवाओं के लिए। वो आएगा तब करेगा, नहीं, उसके पहले ही मुझे करना है। अगली डिपेंडेंसी है साधना, साधन, फैसिलिटीज, साधनों पर निर्भरता। साधन साधना के लिए है, उनके ऊपर अवलंबन के लिए नहीं। हमारी साधना निराधार हो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी स्थान पर आधारित भी ना हो, चाहे मधुबन में हो चाहे और कहीं हो, साधना निराधार हो। अपना योग भट्टी का प्रोग्राम खुद ही तय करना है हर दिन, और ना कि केवल मधुबन में आने के बाद। तो कोई भी साधन, क्योंकि शुरुआत अवलंबन से है और परिणाम है संपूर्ण वशीभूत हो जाना। फिर वही चाहिए, वही व्यक्ति चाहिए, वही स्थान चाहिए, वही साधन चाहिए, वही वस्तु चाहिए, वही संबंध चाहिए। वह संबंध नहीं तो दुख की अनुभूति। और सबसे गहरा सातवां, आध्यात्मिक दासता, स्पिरिचुअल स्लेवरी। वो क्या है? इस आध्यात्मिक जीवन में जो भी हमारी दिनचर्या है, उस दिनचर्या की हर बात के लिए, अध्यात्म की हर बात के लिए, श्रीमत की हर बात के लिए किसी और पर निर्भर रहना। और ये सबसे सूक्ष्म है, चाहे वो किसी का चिंतन ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी की क्लास ही क्यों ना हो। किसी से जाकर कहना कि हम आपके फैन हैं, ये दासता का प्रतीक है। आप बोलते बहुत अच्छे हो, सूक्ष्म दारशा को परिलक्षित कर रहा है। बाबा ने कहा है, फॉलो किसको करो? केवल एक को। बाकी के गुण उठाओ, विशेषता उठाओ, स्वीकार करो, परंतु अनुकरण अनुगमन अनुसरण केवल एक को। क्यों 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 नहीं फॉलो करो भाई बहनों को? क्योंकि संपूर्ण नहीं है। क्यों? और आज आज ये कल वो, आज ऊपर है कल नीचे भी हो सकते हैं। और आवश्यकता नहीं है, जरूरी नहीं है, जो जैसा बोल रहा है वैसा ही कर रहा है भाई बहनों का, वो भी किसी पर निर्भर है इसलिए। और क्या, क्यों नहीं फॉलो करना है? कल को गायब भी हो सकते हैं और रिस्क है बहुत बड़ी फॉलो करने में, क्योंकि जो दिख रहा है शायद वैसा नहीं है, अंदर कुछ और बाहर कुछ भी हो सकता है। फॉलो केवल एक को करना, एक के को ही सर्टिफिकेट दिया है बाबा ने। आध्यात्मिक दास्ता, स्पिरिचुअल स्लेवरी, किसी के चिंतन पर भी निर्भर नहीं। किसी का उधार का चिंतन कब तक हम करते रहेंगे? कब तक ब्राह्मण जीवन का पोषण उधार के चिंतन से होगा? स्वयं का चिंतन, स्वयं का मनन, स्वयं का अध्ययन, किसी भी प्रकार की सूक्ष्म अति सूक्ष्म भी बंधन ना हो, क्योंकि वो बंधन ही, वो जो आसक्ति है, वो जो मोह है या जो आदर भी है, वो भी बंधन बन सकता है। इसके लिए सभी से गुण उठाओ, सभी से सीखो, सभी को सुनो, परंतु किसी में भी फंसना नहीं है। यही सत्य है और यही अच्छा लगता है और यही राइट है, ये नहीं। सब ने इस ज्ञान को उतना ही समझा है जितनी उसकी बुद्धि है, अनुभव है, परंतु ज्ञान विराट है। इसलिए इस दास्ता में भी नहीं फंसना। तो दास अर्थात जो अपसेट है, दास अर्थात जो कंफ्यूज है, दास अर्थात जो हर समय स्वयं को कहां पाता है? मझधार में, परीक्षाओं के मझधार में। दास अर्थात जो सीट से नीचे है। और दास अर्थात क्या खेल करता है वो, कर्मेंद्रिया उसे धोखा देती है, कभी चूहा तो कभी बिल्ली तो कभी कुत्ता तो कभी शेर। आज बाबा ने जानवरों को बहुत याद किया है, पशु पक्षियों को याद किया, मधुमक्खी को याद किया है, तो मकड़ी को याद किया है, तो हंस को भी याद किया है। एक भी कर्मेंद्रिय यदि धोखा देती है तो उसे संपूर्ण त्याग नहीं कहा जाएगा। कब तक ढूंढते रहेंगे और जाल बुनते रहेंगे उसी तीसरे नंबर की बकरी को पाने के लिए, जो है ही नहीं। आंखें हैं छोटी परंतु जाल कितना बड़ा बुनती है, कान है छोटे परंतु जाल कितना बड़ा बुनते हैं। जो बाप की मर्जी वो मेरी मर्जी, मन मर्जी मेरी मर्जी अगर कहा, यह है दास की निशानी। और बाप की मर्जी क्या है, क्या है? बहुत सारी है, आज तो कुछ की नहीं है, ऐसे तो है बहुत सारी। शुभ चिंतन करना, शुभ चिंतक, स्व कल्याण विश्व कल्याण और लव में लवलीन। जो उसकी मर्जी वो हमारी मर्जी, जो उसे पसंद वो हमें पसंद, ड्रामा उसे पसंद है तो हमें भी पसंद आना चाहिए। मर्जी की बात बाबा ने की, फाइल की बात बाबा ने की, दास आत्मा अर्थात कंप्लेंट्स पर कंप्लेंट, कंप्लेंट पर कंप्लेंट, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, 6 मास से परेशान, 3 मास से परेशान, 1 मास से परेशान, जब भी आएंगे तब कंप्लेंट ही कंप्लेंट है, शिकायत है परिस्थितियों की, व्यक्तियों की, हर चीज की। एक बार सुनाया था यहीं पर कि किसी गुरुकुल में एक नियम था कि जो भी विद्यार्थी वहां आते थे 3 साल में बस एक ही बार बोलने का अवसर दिया जाता है और वो भी 2 ही शब्द केवल। ऐसा ही एक विद्यार्थी उस गुरुकुल में आया, 3 साल पूरे हुए, 3 साल तक मौन, संपूर्ण मौन गुरुकुल था, वो है गुरुकुल, ये है ऋषिकुल। तो उस गुरुकुल में 3 साल के बाद जब उसकी बारी आई कि कहो 2 शब्दों में केवल, तो उसने कहा बिस्तर कठोर। 3 साल में एक ही बार बोलने का अवसर मिला, उसने कहा और वो भी 2 ही शब्द कहने, बिस्तर कठोर, फिर मौन। 3 साल फिर गुजर गए, 3 साल के बाद फिर आया गुरु के सामने, गुरु ने इशारे से कहा क्या, उसने कहा खाना गंदा, क्योंकि राज परिवार से आया था। 3 साल बाद फिर आया, शिष्य ने कहा घर जाना, गुरु ने कहा पता था। 3 साल में एक ही बार बोलने का अवसर मिल रहा है, 3 साल में एक ही बार कुछ कहने का अवसर मिल रहा है अपने सीनियर से, जाकर क्या कह रहे हैं, कंप्लेंट्स। अवसर मिल रहा है दादियों से मिलने का बहुत कम बार, पर मिलेंगे तो क्या, कंप्लेंट्स। अवसर मिल रहा है मधुबन में आने का बहुत कम बार, स्वयं को प्राप्तियों से भरने का, ईश्वरीय प्रेम से भरने का, लवलीन होने का, स्थान के वाइब्रेशन स्वयं में ग्रहण करने का, पर आने के बाद कंप्लेंट्स। ये व्यक्ति ठीक नहीं, ये केंद्र ठीक नहीं, ये स्थान ठीक नहीं, ये सेवा ठीक नहीं, ये लोग ठीक नहीं, इससे तो बाहर के लोग अच्छे हैं, कंप्लेंट्स। जितनी बड़ी फाइल होगी, क्या कहा, आंख दिखाइए बाबा ने, फाइल भी उतनी बड़ी होगी, इसके लिए क्या कर दो कंप्लेंट को। मकड़ी क्या करती है, जाल को खा जाती है, वैसे कंप्लेंट को भी अंदर ही अंदर, भगवान को ड्रामा पसंद है, जो उसकी मर्जी वो हमारी मर्जी। कई आत्माओं के जीवन में ऐसी परिस्थितियां हैं, ऐसे समस्याएं हैं जिनका कोई हल ही नहीं, परंतु गहरे में उन्होंने उस परिस्थिति को स्वीकार नहीं किया है। शायद यदि स्वीकार कर ले तो हल आ जाए, संघर्ष है अभी तक कि ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों। बाबा ने कहा आंखें छोटी है, जाल बुनती है, जाल के अंदर फंसते हैं, और फंसने के बाद जो फंसा है उसे ही नहीं पता कि वो फंसा है, रूहानी बेहोशी, एक मूर्छा, स्पिरिचुअल अनकॉन्शियसनेस, और बेहोशी में फिर व्यक्ति जो भी करता है। किसी ने पाप और पुण्य की बहुत सुंदर परिभाषा दी है, पाप अर्थात वो सारे कर्म जो बेहोशी में किए जाए, पुण्य अर्थात वो सारे कर्म जो होश में किए जाए, होशपूर्ण, जागरूकता, सतर्कता, अलर्टनेस, माइंडफुलनेस, अवेयरनेस से जो कर्म किए जाते हैं वो कभी भी पाप नहीं हो सकते, और संपूर्ण होश अर्थात देह आत्माभिमानी स्थिति, बेहोश अर्थात देहभान। एक शिष्य एक गुरु के पास आया और उसने कहा कि हे गुरु, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, क्या करूँ? ऐसा कोई पाप नहीं इस संसार का जो मैंने नहीं किया। हर दुर्गुण मुझ में है, व्यभिचारी हूँ, भिखारी हूँ, क्या आप मुझे स्वीकार करोगे? गुरु ने कहा कि भगवान तुम्हें स्वीकार करता है तो मैं तुम्हें अस्वीकार कैसे करूँ? परंतु शिष्य ने कहा, उस व्यक्ति ने कहा, परंतु ऐसा कोई पाप नहीं जो मैंने किया, क्या उसके बाद भी आप मुझे स्वीकार करते हो? गुरु ने कहा, हाँ मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। उसे राहत मिली। परंतु गुरु ने कहा, क्या तुम मुझे एक आश्वासन दे सकते हो? गुरु माना तो आश्वासन देना था। उसने कहा हाँ। उसने कहा गुरु ने कि जब भी कोई भी कर्म करो तो ये सोचो कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, बस इस होश को लाओ। और एक हफ्ते के बाद वो व्यक्ति आया और उसने कहा, और गुरु ने पूछा, क्या हाल है तुम्हारे पापों का? उसने कहा, जब भी बुरे संकल्प आते थे आपकी ये दो आंखें सामने दिखती थी। जब तक यह होश है, जब तक यह अवेयरनेस थी, जब तक ये माइंडफुलनेस थी, जब तक ये सतर्कता, जागरूकता, चौकस अवस्था थी, जब तक चौकन्ना था, तो पाप कैसे करूं? कोई चलते चलते जबरदस्ती गड्ढे में गिर सकता है क्या? अगर वो संपूर्ण होश में है तो उसे तो बेहोश होना पड़ेगा, मूर्छित होना पड़ेगा, तभी वो गिरेगा। ऐसी अमूर्छा की जो अवस्था है वह होश है। बाबा ने कहा, इस जाल में बंध जाते हैं, ट्रैप्ड, और फिर बेहोश हो जाते हैं। किससे? रूहानी होश से। किससे? मर्यादाओं से। फिर उस बेहोशी की अवस्था में, फिर उस विस्मृति की अवस्था में कुछ भी याद नहीं रहता। ये भी भूल जाता है कि इस ब्राह्मण जीवन की सर्वप्रथम मर्यादा संपूर्ण पवित्रता है। ये भी भूल जाता है कि देह नहीं, जिन्हें देख रहा हूं वो केवल आत्माएं हैं। यह मूर्छा है, डेलिरियम। इसलिए क्या करो? इसका उपाय भी बाबा ने बताया है। क्या एक एक तार को काटोगे? पूछा है प्रश्न। जाल जो बुन रखा है इतना बड़ा, एक एक व्यक्ति के साथ एक एक व्यक्ति ने एक एक जाल बुन रखा है, एक एक संबंध में एक एक जाल बुन रखा है, एक एक वस्तु के साथ जाल बुन रखा है, एक एक कर्मेंद्रियों का जाल, एक एक साधन के साथ जाल, एक एक इच्छा के साथ और एक एक वासना के साथ जाल। कैसे काटोगे? क्या एक एक तार को काटोगे? उत्तर क्या है इसका? क्या कर दो? खा जाओ। क्या करो? खा जाओ इसको, हड़प कर लो इस जाल को। कब तक काटते बैठे होगे एक एक जाल को? कितना विस्तार कर रखा है घर, परिवार, प्रपंच, मित्र, संबंधी, व्यक्ति, वैभव, कैसी कैसी भावनाएं हैं, उन भावनाओं का जाल, उन भावों का जाल, उस वृत्ति का जाल, इस दृष्टि का जाल, कितने सारे जाल हैं, अनगिनत। जैसे वो मकड़ी खा लेती है, क्या कर दो? खा लो। अर्थात क्या कर, क्या बन जाओ? बिंदु बन जाओ, बिंदु में समा जाओ और बिंदु लगा दो। तीन चीजें करो, अर्थात ये जो झाड़ है इतना बड़ा, उसके ऊपर खड़े होकर कौन सी स्थिति में स्थित हो जाओ? मास्टर बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, तो ये सारे जाल जो है समाप्त हो जाएंगे, सारी मूर्छा समाप्त हो जाएगी, सीट पर सेट हो जाओगे, जादू का चुंबक, याद का चुंबक लग जाएगा। अभी कुछ बातें बीज रूप स्थिति की करेंगे, बाबा ने कई बार कहा है बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, सीड स्टेज, परम धाम की अवस्था। सूक्ष्म वतन में क्या करना सभी को पता है, करते ही है। बाबा से वरदान लेते हैं, तिलक लेते हैं, शक्तियां लेते हैं, रूरियान करते हैं, सर्व संबंधों की अनुभूति करते हैं। एक दूसरी अवस्था है परम धाम की। इस परम धाम का योग हमारा लंबा समय चले उसकी कुछ बातें हम देखेंगे। ऐसी फिर से 7 बातें जो हमें रोज परम धाम में जाकर करनी है, जो कि परम धाम में है। यदि हम 5 मिनट रोज टिक रहे हैं तो 5 मिनट से 15 मिनट, 15 मिनट से आधा घंटा और 1 घंटा और अधिक। ऐसा हम क्या करें कि परम धाम में लंबा समय हम टिके और उस असीम आनंद का अनुभव करें। सूक्ष्म शरीर, इस स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर से हम सूक्ष्म वतन में जाते हैं। वहां सब कुछ करने के बाद सूक्ष्म शरीर का भी त्याग कर आत्मा परम धाम जाए। अब परम धाम पहुंचने के बाद वो कौन सी बातें करे कि वहीं पर स्थित हो जाए और लंबा समय स्थित हो जाए और हमारे योग की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो जाए। क्योंकि इसी अवस्था में सारे जाल कटने हैं, क्योंकि इसी अवस्था में वो बेहोशी समाप्त होनी है, क्योंकि इसी अवस्था में अधिकारीपन की स्थिति आनी है, वो दासता से हम मुक्त होंगे। यही अवस्था है झाड़ के ऊपर की। और बाबा ने कहा इसे करो, आंख बंद करके चलो। ये भी बात कही है, जो बाबा कहते हैं फिर इधर उधर की बातें नहीं लाओ, व्यर्थ देखने की आंख बंद करो, जो बाबा कह रहे हैं उसको करो। तो सबसे पहली अवस्था है, जैसी ही आत्मा परम धाम में पहुंचे सबसे पहले याद दिलाना है मैं कहां पहुंचा हूं। अर्थात परम धाम के जितने नाम है वो सारे स्मृति में लाओ। मैं कहां हूं? ब्रह्म लोक में हूं। देखो चारों ओर ब्रह्म है। मैं कहां हूं? ब्रह्म लोक में हूं। जहां संन्यास में गाते थे सर्व खलविदम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म, तत्वमसि, जो उधर के गायन है, वेद वाक्य है, जैसे मैं आत्मा ब्रह्म लोक में हूं, ब्रह्मांड में हूं, ब्रह्म देश में हूं। अलग अलग नाम याद करो। दूसरा, मैं मुक्ति धाम में हूं, और मुक्ति का अनुभव करो कि मैं यहां मुक्त हो चुकी हूं। कैवल्य धाम, मोक्ष धाम। मैं निराकारी दुनिया में हूं, मैं आत्मा निराकार हूं। स्वयं को निराकार देखना और बाकी आत्माओं को भी परम धाम में निराकार देखना। मैं निर्वाण में हूं, निस्तब्ध, निश्शब्द, आवाज नहीं, स्वर नहीं, ध्वनि नहीं, वार्तालाप नहीं, संवाद नहीं, कोई आवाज नहीं, बे आवाज चुप्पी जहां है उस निर्वाण में हूं। मैं इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड में हूं, मैं सोल वर्ल्ड में हूं, मैं अपने घर में हूं, मैं निज वतन में हूं। जितने नाम याद आते हैं ये पहली अवस्था, तो इसमें तो 5 मिनट लग जाएंगे, ज्यादा भी लग सकते हैं। नेक्स्ट, याद करना मैं आत्मा कैसी हूं। सेकंड स्टेज, मैं आत्मा कैसी हूं। ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, जो भी आत्मा के गुण है, 7 गुणों को याद करना। सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, शांति धाम में हूं। शांति धाम की संपूर्ण शांति मुझ में समा रही है। सभी ये संकल्प लिख लो कि शांति धाम की संपूर्ण शांति मुझ शांत स्वरूप आत्मा में समा गई है। ये दूसरी अवस्था। तीसरी अवस्था में देखना है स्वयं परमात्मा सामने है, ज्योति बिंदु। वो कैसा है? ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, शक्ति का सागर, सर्वशक्तिवान, उसका अनुभव। चौथा, परम धाम में उस बिंदु के साथ बिंदु बनकर सर्व संबंधों का अनुभव। चौथा, बिंदु बनकर उस बिंदु के साथ सर्व संबंधों का अनुभव। उस बिंदु बनकर बिंदु से बात करना वहां पर कि इस बिंदु में ही सब कुछ है और यही मेरा सब कुछ है। पांचवा, कंबाइंड स्वरूप, मैं आत्मा अब अलग नहीं रही परंतु उसके साथ एक हो गई हूं। वो और मैं दो नहीं एक। भक्ति में कहते हैं दोनों समाते नहीं है, परंतु इसका अनुभव करना है कि मैं आत्मा उसमें समा गई, देखना है जैसे कि वो सागर है और उस सागर में मैं डूबी जा रही हूँ, प्रेम में, आनंद में, शक्ति में, पवित्रता में, अंदर ही अंदर। अगला छठवा, वो ऊपर मैं नीचे, उसकी सारी किरणें मुझ में आ रही है और मुझसे संपूर्ण धरती पर नीचे जा रही है, प्रेम की, आनंद की, शक्ति की, संसार की सभी आत्माओं को प्राप्त हो रही है। और सातवां अभ्यास, मैं आत्मा परम धाम में हूं, संपूर्ण साक्षी, देखना है वहीं से मैं आत्मा नीचे उतर रही हूं, स्वयं को ही साक्षी होकर देखना कैसे नीचे उतरी, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, कैसे भगवान से मिलन हुआ, कैसे भगवान के प्यार का अनुभव और उसमें मैं समा गई, यह अनुभव। ऐसी सात अवस्थाएं परम धाम की। फिर से रिवाइज करते हैं, पहली परम धाम पे पहुंचते ही कहां पहुंचा हूं पहले स्वयं को याद दिलाओ, ये भी देख सकते एक बहुत बड़ा द्वार है, वो द्वार खुला और मैंने प्रवेश किया, ये लोक है परम धाम का। तद्धामम परमम ममम न तद्भासयते सूर्य न शशांक न पावक, ऐसा ये लोक है जहां न सूर्य है न चंद्रमा है ना ही सितारे हैं। वह धाम, वहां मैं पहुंचा हूं, कहां आया हूं उसकी स्मृति, दूसरा स्वयं की स्मृति, तीसरा परमात्मा की स्मृति, चौथा संबंध, पांचवा कंबाइंड, छठवा वो ऊपर मैं नीचे और किरणें नीचे जा रही, और सातवा साक्षी, संपूर्ण साक्षी हूं, हर चीज में साक्षी हूं, जैसा वो है वैसे मैं हूं, जैसे वो संपूर्ण साक्षी है वैसे मैं साक्षी और निर्लेप हूं, वह अवस्था। तो बाबा ने कहा इस जाल से छूटना है तो क्या हो जाओ, बिंदु बन जाओ। टीचर से बाबा ने बात की है, लॉटरी की चर्चा की है, क्या कहा, सेवा की लॉटरी मिली है, जितनी बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, संभालो बढ़ाना तुम्हारे हाथ में है, उसके लिए निमित्त भाव, निर्माण भाव, नम्रचित, संतुष्टता का फल खाओ और खिलाओ, ये नहीं मैंने किया, मैंने किया ये वर्णन भी नहीं, कितनी अच्छी बात कही। नहीं तो सेवाओं के वर्णन में सेवाओं का वर्णन कम और मैं का वर्णन ज्यादा होता है। बाबा ने कहा तुम्हें लॉटरी मिली है, कितनी खुशी होती है, किसी को मिली है आज तक लौकिक में लॉटरी, जिसको लॉटरी मिलती है उसको बहुत खुशी होती है। ऐसे ही किसी व्यक्ति को एक बार 10 लाख की लॉटरी मिल गई तो उसकी पत्नी इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, और उसने सोचा अगर ये मेरे पति को पता चल जाए ये बात तो हार्ट अटैक आ सकता है, इतनी खुशी की बात, कभी देखे नहीं इतने पैसे। तो वो गई भागती भागती चर्च में और वहां के पादरी से कहा कि कुछ करो, कैसे बताऊं। पादरी ने कहा बिल्कुल निश्चिंत रहो, मैं बताऊंगा कैसे बताना है। और वो आता है और युक्ति से उसके पति से कहता है कि सोचो लगी तो थी 10 लाख की, पर वो पूछता है कि यदि तुम्हें 1 लाख की लॉटरी मिल जाए तो तुम क्या करोगे। तो पति कहता है अच्छा ऐसा हो सकता है, पहले तो मैं 50,000 तुमको दे दूंगा। जैसे ही ये बात सुनता है पादरी और नीचे धड़ाम से गिर जाता है, कोलैप्स। ये हंसी की बात थी। तो बाबा ने कहा तुम्हें लॉटरी मिली है, सेवा की लॉटरी। मैंपन समाप्त, निमित्त भाव, मैंने किया ये वर्णन भी नहीं। अगर ऐसा करो और बाबा बाबा शब्द कहो तो जिनकी सेवा कर रहे हैं उन्हें भी शक्ति रूप का अनुभव होगा, शक्ति स्वरूप का अनुभव होगा, उनका भी योग उस सर्वशक्तिवान से जुड़ जाएगा। कितनी सुंदर बात कही है। नदियों को याद किया है, सोचो मैं नदी हूं और कहां जा रही हूं, सागर से मिलने के लिए। बहुत सुंदर दृश्य है ये भी, सागर वो है मुझे पुकार रहा है, मैं नदी हूं, यूपी ग्रुप से बाबा ने कहा है। सागर में जैसे लीन होने के लिए दौड़ रही हूं, मुझे रुक नहीं, मैं रुक नहीं सकती कहीं पर भी। फिर कहा मधुमक्खी की तरह क्या करो, केवल विशेषता देखो, कमजोरी देखोगे तो कमजोर बन जाओगे। हंस की तरह क्या चुगो, केवल मोती, अवगुण रूपी कंकड़ नहीं। समय की बात की, समय कैसा है, महान। मैं कैसी हूँ, महान आत्मा। महान आत्मा बनने का वर्षा तुम्हें मिला है, कितनी सुंदर बात कही है। अधिकारी आत्मा जो दास आत्मा है वो भी खेल करती है, क्या करत भय, परंतु अधिकार आत्मा है, कौन सा खेल करती है, मुरली सभी ने सुनी है और पढ़ी भी होगी, कौन सा खेल करती है, पार्टियों से मुलाकात, ज्ञान का खेल, ज्ञान के खजानों से खेलती है, शक्तियों के खजानों से खेलती है। मुख से ज्ञान रत्न निकले और मन में क्या हो, ज्ञान का मनन। तो यहां पर मुरली बाबा ने पूरी की। तो क्या क्या सुना, क्या बनना है, राजऋषि, अधिकारी आत्मा, सिंहासन पर जो सेट है, जो सदा हर्षित है, तन से मन से, जो कभी अपसेट नहीं होते, कभी कंफ्यूज नहीं होते, कभी जाल में नहीं फंसते, कभी वो खेल नहीं करते, अभी इसने धोखा दिया, अभी उसने धोखा दिया, फॉलो करते हैं और अपनी मर्जी, उसकी मर्जी को अपनी मर्जी समझते हैं, जो उसने कहा बस उसको फॉलो करना। मास्टर सर्वशक्तिवान और विश्व विघ्न विनाशक की स्टेज की शान पर स्थित रहते, कभी परेशान नहीं होते, ये होमवर्क है, ऐसा बनना है। और उसके लिए अधीनता को समाप्त करना है, 6-7 प्रकार की अधीनता सुनाई, स्वयं को चेक करना, इनमें से कोई भी अधीनता यदि मुझ में है तो उसे समाप्त करना है। और विधि क्या है, बीज, मकड़ी क्या कर दे, जाल को खा ले, तो वैसे हमें भी क्या करना है, इस बीज रूप स्थिति का लंबा समय तक अभ्यास, जो कहा परमधाम में जाओ और उसी बीज रूप स्थिति में लंबा समय तक अभ्यास, तो सारी कंप्लेंट्स खत्म हो जाएगी। शायद हो सकता है उसी बीज रूप अवस्था में कोई एक ऐसा संकल्प आ जाए कि जिसमें सारी समस्याओं का हल आ जाए। उसी अवस्था में, अशरीरी अवस्था में ही विकर्म विनाश होते हैं और अशरीरी अवस्था में ही अवचेतन मन जागृत होता है और वहीं से सारी समस्याओं का हल निकलता है बाहर। इसलिए बजाय इसके कि कंप्लेन करते रहे, क्या करना है, अशरीरीपन का अभ्यास, गुणों को देखना, विशेषताओं को देखना, नम्रता, नम्रचित। उससे और एक बात भी कही है, दूसरों को आगे बढ़ाना। ब्रह्मा का उदाहरण, बाबा ने ब्रह्मा का उदाहरण इसके लिए भी दिया कि मालिक होते हुए भी क्या समझा, स्वयं को निमित्त समझा, तो वो निमित्त भाव कूट कूट कर भरना है कि सब कुछ वो कर रहा है। ऐसे राजऋषि आत्माओं को, ऐसे सदा त्यागी और अधिकारी आत्माओं को, ऐसे मास्टर बीज रूप स्थिति में लवलीन आत्माओं को, ऐसे बेहोशी के जाल को और आवागमन के जाल को समाप्त करने वाली आत्माओं को, नीचे ऊपर भी नहीं होना, ये भी आवागमन का जाल है बाबा ने कहा, ऐसे बेहोशी के जाल को समाप्त करने वाली आत्माओं को और आवागमन के जाल को समाप्त करने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति। साधन मिला है किसी का, जिसका हो ले जाए।